आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं।
दूरेन ह्यपरं कर्मा बुद्धियोग धनंजया बुधौ शरणमान्विच्छा कृपनाफल हेतवः। O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers.
हे धनंजय, भक्ति के द्वारा सब बुरे कार्यों को दूर रखो, और जो कर्मों का फल का भोग करना चाहते हैं वो तो कंजूस हैं।
Lord Krishna, Haribol, is the supreme authority of transcendental knowledge.
भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के सबसे बड़े अधिकारी हैं।
He is the source of all truth.
वे सब सत्य के स्त्रोत्र हैं।
Because he is the absolute truth.
क्योंकि वो परम सत्य हैं।
And Bhagavad Gita is worshipable because it is spoken by Krishna.
भगवद गीता पूजनीय है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं।
If Bhagavad Gita was spoken by an ordinary man, it would not be a worshipable scripture with the power to deliver us from the cycle of birth and death.
अगर भगवद गीता जो है साधारण व्यक्ति के द्वारा बोली गई होती तो वो पूजनीय शास्त्र नहीं होता जो कि जन्म मृत्यु से व्यक्ति को दूर ले जाता।
Bhagavad Gita is spoken by the supreme personality of Godhead, the source of everything that exists.
भगवद गीता भगवान के द्वारा बोली गई है जो कि सब चीजों के स्तोत्र हैं।
Krishna explains in Gita, evam parampara pravtam idam rajashayabhu, that this message must be received through disciplic succession.
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संदेश को परंपरा के द्वारा प्राप्त करना चाहिए।
It is fashionable today that people give their own opinions, their own ideas in the name of Krishna or Bhagavad Gita.
आजकल ऐसी प्रथा है कि लोग भगवद गीता और कृष्ण के नाम पर अपने स्वयं के विचारों को प्रकट करते हैं।
The great acharyas, they condemn giving an opinion on the basis of the teachings of Gita.
जो महान आचार्य जो हैं वो इस बात की भर्त्सना करते हैं कि गीता के नाम पर अपने स्वयं के विचार को पेश करना।
Bhagavad Gita must be spoken and heard as it is.
भगवत गीता का श्रवण जो है और बोलना उसी तरह से होना चाहिए जैसे कि वो यथारूप है।
As it is means simply as Krishna speaks.
और यथारूप यानी जैसे कृष्ण भगवान ने बोला उसी प्रकार।
The truths and the meaning of Gita are so simple to understand.
गीता के अर्थ और सत्य जो है समझने में बहुत सरल हैं।
But due to so many complicated motivations in people's minds, they misdrew the true teachings of the Gita.
लेकिन लोगों का मन जटिल होने के कारण वो गीता का गलत अर्थ निकाल बैठते हैं।
Krishna says in Gita, "Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braja, aham tvam sarva papebhyo mokshaye shimasucha." That we should abandon all varieties of conceptions, speculations, and religions. And we should surrender to me. When Krishna says me, this means Krishna.
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर वो मेरी शरण में आ जाओ। और जब कृष्ण मेरे शरण में कहते हैं इसका मतलब कृष्ण की शरण में आना।
But yet commentators are giving so many ideas of what me means.
लेकिन जो अलग जो तार्किक लोग होते हैं टीकाकार लोग वो कई अर्थ बताते हैं कि मैं का मतलब क्या है।
Some say when Krishna says me, he doesn't mean Krishna, he means the impersonal, invisible, inconceivable truth within Krishna.
कुछ लोग कहते हैं जब कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका मतलब वो कृष्ण नहीं है लेकिन वो निर्विशेष जो अप्रकट जो कृष्ण के अंदर है उसके बारे में कह रहे हैं।
And some they explain that when Krishna sees me, says me, it means you, because you and Krishna are the same.
और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं मैं उसका मतलब वो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं क्योंकि आप और कृष्ण एक ही हैं।
But if I say me, or you say me, it means you or me. When Krishna says me, it means Krishna.
जब मैं कहता हूँ कि मैं या आप कहते हैं कि मैं तो इसका मतलब वो हमारे और अपने बारे में कह रहे हैं। ऐसे जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं।
There are so many commentators of Gita, so many lecturers of Gita, but who is telling to surrender to Krishna.
गीता पर कई टीकाकार हैं और कई प्रवचन करता हैं, लेकिन कौन ये सिखा रहा है कि कृष्ण को समर्पण करो?
कृष्ण explains in Gita, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व तत्यक्त्व देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति स्वरूपिनः. That one who understands his transcendental nature and that of his birth and activities will never take birth again in this material world, but after dying will attain his supreme abode.
Krishna Bhagwan batate hain ki jo Krishna ke janam aur karma ko jaan lete hain, wo is bhautik sansar mein phir laut kar nahi aate balki Bhagwan ke dham mein jaate hain.
But those who comment on Bhagavad Gita through so much word jugglery and philosophy, but do they explain the transcendental nature of Krishna's appearance and activities?
कई लोग जो है जो गीता पर अपना स्वयं कर्म बताते हैं और वो कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में नहीं बताते.
Krishna explains in Gita, sa eva yamayate ya yoga prokta puratana bhakto sime rachakyeti rahasyam yetabhutamam. That Arjuna, you can understand this teaching because you are my devotee.
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि आप इस शिक्षा को समझ सकते हैं क्योंकि आप मेरे भक्त हैं.
But how many are teaching devotion to Krishna?
लेकिन कितने लोग हैं जो कि कृष्ण की भक्ति सिखला रहे हैं?
And today we are reading a beautiful verse where Krishna is saying that we should keep all abominable activities far distant by bhakti or devotional service.
आज हम एक सुंदर श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सब बुरे कार्य जो हमें भक्ति के द्वारा उनको दूर रखना है.
And in that consciousness we should surrender to Krishna.
और इस चेतना में कृष्ण को समर्पण करना चाहिए.
Those who want to enjoy the fruits of their actions or work are misers.
जो अपने कर्मों के फल का भोग करना चाहते हैं वो तो कृपण हैं.
Yet right here in Pune there are famous reciters of Gita who are printing right in the paper that you can follow Gita without giving up any of the pleasures of this world.
लेकिन यहां पर हम पुणे में ही देखते हैं कि ऐसे कोई गीता के प्रवचनकार हैं जो अखबार में बताते हैं कि आप गीता की शिक्षा का पालन कर सकते हैं और बिना इंद्र तृप्ति का त्याग किए.
Is that what it says?
Yes.
What does it say?
There is no need for giving. There is. I'll say it. There is no need for giving up any material pleasures. इंद्रियों तृप्ति त्याग करने का जरूरत नहीं है भगवान के लिए.
But Krishna here says that those who try to enjoy material pleasures are misers.
लेकिन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जो भौतिक इंद्र तृप्ति भोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो कृपण हैं.
That such a mentality is abominable and one must keep it distant by devotion to God.
ये जो मानसिकता है ये त्यजनीय है और भक्ति के द्वारा इसको दूर रखना चाहिए.
And yet thousands and thousands and thousands of people will come to hear this explanation of Gita.
लेकिन कई हजारों लोग जो है इस गीता की समझ को प्राप्त करने के लिए आते हैं.
But if we explain that you must give up material enjoyment, this is the teaching of Gita, hardly a few hundred will come.
लेकिन अगर हम कहते हैं कि आप इंद्र तृप्ति का त्याग करो तो बहुत कम लोग जो है कुछ 100 लोग 200 लोग ऐसे आते हैं श्रवण करने के लिए.
Because in this material world people do not want to give up their attachments to material enjoyment.
क्योंकि इस भौतिक दुनिया में लोग जो है इंद्र तृप्ति का त्याग नहीं करना चाहते.
And in the name of religion they want to maintain their material attachments.
और धर्म के नाम पर जो है भौतिक आसक्ति को बनाए रखना चाहते हैं.
But this is a great illusion.
लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है.
Because liberation from suffering, birth or death, or elevation to spiritual joy is impossible as long as we are attached to our own selfish motivations.
जब तक हम अपने स्वार्थ की इच्छाओं से आसक्त हैं तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ये संभव नहीं है.
People become so attached to the bodily concept of life they do not want to change their situation and purify themselves.
लोग भौतिक चेतना से इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते.
But Bhagavad Gita is exclusively meant to teach us how to become detached from material enjoyment, attached to the service of the Lord, and thus become purified.
लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे भौतिक इंद्र तृप्ति से मुक्त होकर भगवान की सेवा से आसक्त होकर शुद्ध बन सकते हैं.
Any situation a person is in this material world, Maya is so strong that she can capture our heart.
कोई भी स्थिति में हम हो इस भौतिक दुनिया में माया इतनी इतनी प्रबल है कि वो हमको वश में कर सकती है.
In this regard, there is a simple story told.
इसके बारे में एक छोटी सी कथा है.
That once Lord Indra, who is the king of heaven, he was engaging in very, very offensive and materialistic activities.
एक बार इंद्र जो है वो ऐसे बहुत सारे भौतिक कार्य में लगे हुए थे.
So his spiritual master, Brihaspati, wanted to teach him a good lesson.
और उनके जो गुरु थे बृहस्पति उनको शिक्षा प्रदान करना चाहते थे.
And he cursed Indra to descend from his royal throne, where he was surrounded by all of the demigods, Gandharvas, Apsaras, fabulous wealth, and take birth in this earth planet as a hog.
उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि आप ये स्वर्ग का राज्य का जो है का पतन हो जाएगा और एक सुअर के रूप में जन्म मिलेगा.
Instead of living in the most beautiful palace in the heavenly planets, sitting on a beautiful throne, he was laying in a gutter of stool.
इतने ऊंचे स्वर्ग के महल में रहने के बजाय वो एक विष्ठा के गटर में गिरे पड़े.
Instead of eating the finest heavenly foods, heavenly fruits, heavenly vegetables, cooked by heaven's best cooks, he was eating stool of humans and other animals.
बजाय इसके कि बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन स्वर्ग के खाने के बजाय वो जो है मानव के और दूसरे पशुओं के विष्ठा का जो है पान कर रहे थे.
Instead of enjoying life with beautiful apsaras like Urvasi or Sachi Devi, he was having girlfriends and wives who were in hog bodies.
और बजाय इसके कि उर्वशी और सचि देवी जैसे जो है अप्सराओं का भोग करने के वो ऐसे ऐसे स्त्री का संग कर रहे थे जो कि सुअर शरीर में थे.
Because the post of Indra is a very important post, Lord Brahma came down to the earth to request Indra to give up his hog body and come back to heaven.
क्योंकि इंद्र की जो पदवी है ये बहुत ऊंची है, इसलिए ब्रह्मा जी धरती पे आए और बोले कि आप ये शरीर का त्याग करके वापस स्वर्ग में आ जाइए.
But Indra became so attached to being a hog that he did not want to go back to heaven.
लेकिन इंद्र को इतनी आसक्ति थी कि सुअर के शरीर से कि वापस नहीं जाना चाहते थे.
He was thinking, how will I live without all this nice stool to eat?
वो सोचने लगे कि इतना सुंदर विष्ठा के बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा.
And how can I possibly give up such a beautiful wife as this female hog?
और ये जो जो ये जो सुअर सुअरनी है उसको कैसे मैं त्याग कर सकता.
And how could I possibly live without the sweet sounds of the oinking oinking of my little children?
मेरे छोटे बच्चों की मीठी मीठी जो आवाज है oinking, उसको कैसे सुनना कैसे.
He was completely intoxicated by his hog life.
वो अपने सुअर जीवन में बहुत नशे में फंस गए थे.
And he wouldn't give it up even for the royal riches of heaven.
और स्वर्ग के सुख के लिए भी वो उसका त्याग करने के तैयार नहीं थे.
So Brahma and the devatas were requesting him again and again, but he was insistent that I cannot give up this life. I am too much attached to this beautiful wife, children, and my wonderful diet of eating stool.
वो बताने लगे कि इतने सुंदर पत्नी और बच्चे और इतना सुंदर भोजन जो विष्ठा का है वो मैं त्याग नहीं कर सकता.
So by the arrangements of the devatas, there was a farmer.
और देवताओं के इंतजाम से वहां पर एक किसान था.
And he brought Indra and his family to the butcher.
और वो इंद्र और उसके परिवार को एक कसाई खाने में ले गए.
And Indra saw all of his little children get their heads cut off.
और उसने देखा कि उसके सब बच्चों के सर काट दिए गए.
To be prepared as food for unscrupulous men.
और जो बदमाश लोग हैं उनके लिए भोजन के रूप में बनाने के लिए.
And then his wife was killed.
फिर उनके पत्नी को भी मारा गया.
And then the butcher picked up Indra and was ready to kill him.
और कसाई ने इंद्र को पकड़ लिया और उसको मारने के लिए तैयार थे.
And Brahma said to Indra, will you come back?
अब ब्रह्मा ने इंद्र से पूछा, अभी चलोगे वापस?
So Indra agreed.
और इंद्रा फिर मान गए वापस जाने.
That is the story of you and me.
ये कहानी हमारी और आपकी है.
Our natural inhabitants is the spiritual world.
हमारा असली घर भगवान के धाम में है.
Far the wealth, the pleasure of the spiritual world is inconceivably unlimitedly greater than even the pleasures of the heavens of Indra.
जो आध्यात्मिक जो जगत का आनंद है वो स्वर्ग के अपेक्षा भी बहुत कई गुना ज्यादा है.
But somehow we have chosen to leave that place to live in this world.
लेकिन दुर्भाग्यवश हमने वो जगह को त्याग करके इस दुनिया में हम आ गए.
Like hogs.
सुअर की तरह.
And we become attached.
और हम आसक्त हो जाते हैं.
In the spiritual world, we have an eternal spiritual body, which is eternal, full of knowledge and bliss.
भगवान के धाम में हमारा शरीर है जो कि सत, चित और आनंद है, नित्य है, ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण है.
And all of the associates we have in the spiritual world are eternal loving partners in our service to the Lord.
और जितने भी सहचर हैं वो भगवान की सेवा में जो है लगे रहते हैं.
Here in this world, we have this body which is subjected to disease and old age. And so many anxieties. And our loved ones, our relatives, they are all gradually being butchered by the butcher of time. And the pleasures of this world always end up in pain and disturbance.
और जो भी जीवन के आनंद हैं वो दुख में और तकलीफ में अंत होते हैं.
And Krishna comes to this world personally and he says, come back home, back to Godhead.
और कृष्ण भगवान खुद आकर बोलते हैं, आओ वापस मेरे धाम आओ.
But we like Indra, we are saying, no, how can I live without enjoying this body or enjoying my loved ones?
लेकिन हम इंद्र की तरह सोचते हैं कि अपने प्रेममय के व्यक्ति के बिना हम कैसे आनंद ले सकते हैं.
How can I give up this flat that I've spent so much time to pay for?
और ये जो फ्लैट जो मैंने कई समय से मेहनत लगा के लिया है उसे छोड़ सकता हूँ?
This is a great illusion.
ये जो है सबसे बड़ा भ्रम.
Material enjoyment is the very problem that keeps us from eternal bliss.
भौतिक आनंद जो है वही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि नित्य आनंद से हमें रोकती है.
The spirit soul eternally is longing for enjoyment.
जो आत्मा है वो हमेशा आनंद के लिए उत्सुक रहता है.
Bhagavad Gita teaches us how to truly enjoy.
भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे सही में आनंद लेना है.
By engaging our senses and our mind in the service of Krishna, we can enjoy real pleasure in this life.
हम अपने इंद्रियों को और मन को कृष्ण के सेवा में लगाकर सच्चा आनंद ले सकते हैं.
By using our mind and senses to enjoy the selfish pleasures of this world, we simply incriminate ourselves deeper and deeper in forgetfulness of God.
और अगर हम अपने मन और इंद्रियों को संसार के आनंद भोग में लगाते हैं तो हम और ज्यादा भ्रम में पड़ते जाते हैं.
And the laws of God.
और भगवान के नियम में.
But it's so easy to become attached to the things of this world.
और ये कितना आसान है कि ये दुनिया में आसक्त हो जाने का.
Just like this temple that we are in, this hall. If the lights were working properly, we would become very attached.
अगर लाइट बहुत सही काम कर रही थी तो हम बहुत आसक्त हो जाते.
We would think how nice life is in the material world.
हम सोचते हैं कि भौतिक जीवन में जीवन अच्छा है.
But because by nature's arrangement, they keep going on and off and on and off.
प्रकृति के नियम से वो आते हैं और चले जाते हैं.
We are quite aware of how miserable life is.
और हमें पता रहता है कि जीवन कितना दुखदायी है.
So this is very good.
ये बहुत अच्छा है.
We accept any situation as an opportunity to become more serious about our spiritual life.
कोई भी स्थिति को हमें स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होने के लिए.
Our devotional service should not be based on favorable conditions.
हमारी भक्ति जो है वो अनुकूल स्थिति पर आधारित नहीं होनी चाहिए.
Our devotional service should be based on our sincerity.
हमारी भक्ति जो है वो ईमानदारी पर आधारित रहनी चाहिए.
Krishna explains in Gita, "Tham sthitikshasva bharata, matra svarashastu kontaya sita snashukadukata, agamapayano nityas tham sthitikshasva bharata." we should not be attached to the non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress.
हमें जो है सुख और दुख के आने जाने से यह प्रभावित नहीं रहना चाहिए.
We should not be attached to whether the lights are on or off.
Light on हो या off हो इससे आसक्त नहीं रहना चाहिए.
We should not be attached to whether the sound system works or not.
Sound system कार्य कर रहा है या नहीं इससे हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए.
We should not be attached to whether people put garlands on you or throw stones at you.
लोग आपके ऊपर माला पहनाएं या आपको पत्थर फेंकें इससे आसक्त नहीं रहना चाहिए.
We should not be attached to whether our business is a success or a total failure.
हमारा व्यापार सफल हो या असफल हो उस पे आसक्त नहीं रहना चाहिए.
We should simply be attached to pleasing Krishna.
कृष्ण को आनंद देने में ही हमें आसक्त रहना चाहिए.
And Krishna can be pleased under any circumstance.
और कृष्ण किसी भी स्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं.
If we are sincere.
अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें.
When Krishna says we should learn to tolerate the non-permanent appearances and disappearances of this world, it means we should continue our devotional service under all circumstances.
कृष्ण भगवान जब बोलते हैं कि हमें अनासक्त रहना चाहिए तो इसका मतलब हमें भक्ति जारी रखनी चाहिए.
And devotional service is established through the process of associating with devotees, hearing the glories of the Lord and chanting His holy names.
और भक्ति की शुरुआत जो है वो भक्तों के संग से भगवान की कथा श्रवण से और भगवान का नाम कीर्तन करने से होती है.
No matter what happens in our life, we should never give up the chanting of the holy names.
चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए भगवान का नाम कीर्तन त्याग नहीं करना चाहिए.
We should never give up hearing the glories of the Lord in the association of devotees.
भक्तों के संग में भगवान के गुण का श्रवण बंद नहीं करना चाहिए.
That is the sign of our surrender.
ये हमारे समर्पण का लक्षण है.
Anyone can do what they are supposed to do in favorable conditions.
अनुकूल स्थिति में जो भी कोई जो करना है वो कोई व्यक्ति कर सकता है.
But only a sincere soul will continue with determination even in unfavorable conditions.
लेकिन एक सच्चा भक्ति है जो कि जब अनुकूल स्थिति नहीं है तभी भी वो अपनी सेवा को जारी रखता है.
And this is what Bhagavad Gita teaches us.
और यही है जो भगवत गीता सिखलाती है.
We should not be fooled by cheaters who teach us something else.
हमें उन धोखेबाजों के जो है धोखा नहीं खाना चाहिए जो कुछ और सिखा रहे हैं.
That you can be liberated by performing any kinds of pleasures of material enjoyment and at the same time you just hear Gita and you will become liberated.
जो कि कहते हैं कि आप मुक्त हो सकते हैं आप भौतिक आनंद का ही भोग कर सकते हैं और साथ साथ गीता का श्रवण कर सकते हैं और मुक्त हो जाएंगे.
One of the most famous lecturers of Gita, he drinks alcohol.
एक गीता के एक बहुत मशहूर जो प्रवचन करता है वो शराब पीते हैं.
Because he likes to become intoxicated.
क्योंकि उसको नशा में आना मजा आता है.
Why do people get intoxicated?
लोग क्यों नशा स्वीकार करते हैं?
Because they're frustrated with life.
क्योंकि वो जीवन से दुखी हैं.
A happy person does not take intoxication.
एक सुखी व्यक्ति जो है नशीले पदार्थ नहीं लेता.
A miserable person takes intoxication.
एक दुखी व्यक्ति ही नशे की चीजों को लेता है.
But a miserable person who's very intelligent by material standards can create a whole philosophy around his intoxication.
एक दुखी व्यक्ति जो है वो जो बुद्धिमान भी है वो अपने दर्शन शास्त्र को बना सकता है अपने इंद्रियों की तृप्ति के अनुसार.
This one great person who hundreds and thousands of people go to hear his purports of Gita. When he drinks alcohol, someone asked him, "Why you are drinking alcohol?"
ये जो व्यक्ति जो हजारों लोग जिसका प्रवचन सुनने जाते हैं उसे किसी ने पूछा आप शराब क्यों पीते हैं.
He said, "Everything is Brahman."
वो बोले सब ब्राह्मण है.
I am Brahman.
मैं ब्राह्मण हूँ.
The alcohol is Brahman.
और शराब भी ब्राह्मण.
So when I drink alcohol, it is simply Brahman merging into Brahman.
और जब मैं शराब पीता हूँ तो ब्राह्मण ब्राह्मण में मिल जाता है.
This is the highest realization.
ये सबसे बड़ा साक्षात्कार है.
And foolish people say, "Oh, he is so advanced."
और मूर्ख लोग बोलते हैं ये तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं.
But we do not say like that.
लेकिन हम ऐसा नहीं कहते.
He is advanced in cheating.
वो धोखा देने में बहुत आगे बढ़े हुए हैं.
Krishna explains in Gita, "Thani sarvani samyamya yukta asat me." That we must restrain our senses and fix our consciousness on Krishna.
कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हमें इंद्रियों को वश में कर उनकी शरण में लगाना चाहिए.
He explains that one who controls his mind and senses is a yogi.
जो अपने इंद्रियों और मन को वश में करता है वो सच्चा योगी है.
And he makes the process of controlling the mind and senses wonderful.
और वो मन और इंद्रियों को वश में करने का तरीका बहुत सुंदर बनाया है.
Unless one understands and practices the path of bhakti, they cannot be happy.
जब तक व्यक्ति भक्ति के मार्ग को समझकर उसका पालन नहीं करते तब तक सुखी नहीं हो सकते.
Because through bhakti we learn how to purify our lives by using our mind and using our senses for Krishna's pleasure.
क्योंकि भक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने इंद्रियों को और अपने मन को कृष्ण में लगा सकते हैं.
Those who are speculative impersonal philosophers, because they find no spiritual pleasure in using their mind and senses for Krishna's service, they therefore create a whole philosophy so they can enjoy material pleasures and say it is Brahman.
जो दार्शनिक लोग हैं जो कि मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में का आनंद नहीं ले सकते वो अपने आप की जो है फिलॉसफी बनाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण है.
But we must search that means by which real enjoyment can be experienced.
हमें वो तरीका खोजना चाहिए जिससे सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है.
On the spiritual platform,
जो कि आध्यात्मिक स्तर पर है.
Through actions which are not bound by the laws of karma.
ऐसे कार्यों के द्वारा जो कर्मों के द्वारा बद्ध नहीं हैं.
And that is only possible through service to the Lord.
और वो तभी संभव है जब हम भगवान की सेवा करते हैं.
And in this age of Kali Yuga, the supreme most of all service we can offer to the Lord is through the congregational chanting of the holy names.
और इस कलयुग में जो सबसे अच्छी सेवा जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं वो है नाम संकीर्तन.
This is actually Brahman merging into Brahman.
ये वास्तव में है ब्रह्म ब्रह्म में लीन होना.
This is actually intoxication that intoxicates the soul with bliss.
ये सच्चा नशा है जो कि आत्मा को जो है आनंद का नशा देता है.
The holy name of Krishna is none different than Krishna.
श्री कृष्ण भगवान का नाम उनसे अभिन्न है.
All the opulence and glory of Krishna is in his name.
कृष्ण के सारे ऐश्वर्य जो है वो उनके नाम में है.
When we drink the beautiful sound of the name of Krishna through our ears, and when we taste the sound of Krishna through our tongues, Rupa Goswami, he explains that it is so intoxicating that he desires millions of tongues and billions of ears.
तो जब हम भगवान के नाम का जो है श्रवण करते हैं और गाते हैं तो आनंद होता है. और रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि लाखों जीवा और लाखों कान जो उनके पास हों.
The holy name of Krishna penetrates through all material misconceptions and directly goes to the soul.
और ये जो भगवान का पवित्र नाम है सारे भौतिक धारणाओं को पार करते हुए आत्मा के स्तर तक पहुंचता है.
And through such congregational chanting of Krishna's name, we experience the ultimate, purest spiritual form of transcendental intoxication.
और इस भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा हम आध्यात्मिक रूप का जो नशा है उसका अनुभव कर सकते हैं.
Lord Chaitanya said, "Anandam buddhivardhanam." It is the taste we are all aspiring for.
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आनंदम बुद्धिवर्धनम ये वो स्वादन है जिसके लिए हम सब उत्सुक हैं.
This joyful, this process of Krishna consciousness is simply joyful.
ये कृष्ण भावना का तरीका है जो है सबसे ज्यादा आनंददायक है.
Chanting, dancing and feasting.
कीर्तन, नृत्य और प्रसाद.
Let others speculate and create so many misconceptions of Bhagavad Gita. We will understand everything simply by chanting the holy names.
लोग चाहे तो भगवद गीता के गलत धारणाएं रखें लेकिन हम तो सब कुछ कीर्तन, नृत्य और प्रसाद से समझ सकेंगे.
To always think of Krishna is very simple for those who always remember him through his name.
कृष्ण का हमेशा स्मरण करना उन लोगों के लिए संभव है जो कि उनका नाम स्मरण करते हैं.
At this time we would like to invite everyone to participate in the kirtan of the holy name of the Lord.
तभी हम सब आमंत्रित करेंगे कि आप लोग कीर्तन में.
Thank you very much.
बहुत धन्यवाद.